आहान ने विजय ओबेरॉय से वापस ओबेरॉय इंडस्ट्री ले तो ली थी, लेकिन अभी उसके सामने असली चैलेंज आने वाला था। बहुत से लोग विजय के लिए काम करते थे, ऐसे में आहान का पूरी तरह कंपनी टेकओवर कर पाना पॉसिबल नहीं था। आयुष ने उनमें से एक इंसान के बारे में बताया जिसका नाम राजवीर शर्मा था। आहान ने कल होने वाली शेयरहोल्डर्स की मीटिंग को खुद हैंडल करने का सोचा। आयुष से बात करने के बाद आहान जब कमरे में पहुंचा तो चाहत वामिका को सुला रही थी। भले ही शिवानी के सामने आहान ने चाहत का पक्ष लिया हो, पर सच्चाई यही थी कि चाहत का इस तरह वामिका को संभालना आहान को अच्छा नहीं लग रहा था। आहान चाहत के करीब आकर बैठा और उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए कहा, अब ये सो चुकी है तो इसे किसी दूसरे कमरे में छोड़ आता हूँ, मेरे आदमी इसकी देखरेख कर लेंगे। जैसे ही आहान वामिका को गोद में उठाने को हुआ, चाहत ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। चाहत ने नामे सिर हिलाकर कहा, प्लीज़ इसे रात को यहीं सोने दीजिए, अगर इसकी नींद टूटी और उसे भूख लगी तो इसे कोई खाना खिलाने वाला नहीं होगा। तुम इसकी बेबीसिटर नहीं हो चाहत, कहोगी तो कल बेबीसिटर भी बुला दूंगा, लेकिन तुम इसे हाथ नहीं लगाओगी, आहान ने गुस्से में कहा। चाहत के रोकने के बाद भी उसने वामिका को उठा लिया था। चाहत जानती थी आहान को रोकना बेकार है। आहान वामिका को लेकर बाहर की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे शिवानी उस तरफ आती हुई दिखाई दी। शिवानी वामिका को देखने के लिए ही आ रही थी। वामिका को आहान की गोद में देखकर कहीं ना कहीं वो समझ भी गई थी कि आहान और चाहत के बीच वामिका को लेकर पक्का बहस हुई है। शिवानी आहान के पास गई और धीमी आवाज़ में कहा, बच्ची को मुझे दे दो, मैं इसकी देखभाल कर लूँगी। आहान ने गुस्से से शिवानी की तरफ देखकर कहा, मैंने डॉल से भी यही कहा था और आपसे भी यही कहूँगा कि आप दोनों इसकी बेबी सिटर नहीं हैं और ना ही बनने की ज़रूरत है। आप दोनों अपने इमोशंस के चक्कर में सच को भूल सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। आहान बेटा, जिद नहीं करते हैं, ये बहुत छोटी है और तुम इसके माँ बाप के किए की सजा इसे क्यों दे रहे हो, फिर उनमें और तुम में फ़र्क क्या रह जाएगा, शिवानी ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। आहान के रोकने के बावजूद शिवानी ने ज़बरदस्ती वामिका को अपनी गोद में ले लिया। वामिका सोते वक्त और भी ज़्यादा मासूम लग रही थी। उसकी तरफ देखकर शिवानी के चेहरे पर अपने आप हल्की स्माइल आ गई। आहान शिवानी को गौर से देख रहा था, तभी शिवानी ने उसकी तरफ देखकर कहा, एक बार के लिए भूल जाओ कि ये विजय ओबेरॉय का खून है। ज़रा सोचो, इसकी जगह तुम्हारी और चाहत की बेटी हो तो क्या तुम उसे ऐसे ही कमरे से बाहर निकालोगे? आपको इसे ले जाना है तो ले जा सकती है, पर इसके साथ हमारे बच्चे को कंपेयर मत कीजिए, आहान ने अभी भी बेरुखी से कहा और कमरे के अंदर चला गया। वैसे भी उसको मनाना आसान कहा था। शिवानी ने गहरी सांस लेकर छोड़ी और कहा, आज भी उतना ही जिद्दी है, पता नहीं ये सुनता क्यों नहीं है। एक बार दिल में जो बिठा दिया, इसके लिए उसे बदलना नामुमकिन है। शिवानी ने आहान के बर्ताव की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो उसे जानती थी कि आहान अपने मन की ही करता है, चाहे कोई उसे कितना भी क्यों ना समझा दे। शिवानी चुपचाप वामिका को लेकर अपने कमरे में चली गई। वहीं आहान वापस अपने कमरे में आया तो चाहत कंफर्टेबल होकर सोने की कोशिश कर रही थी, पर डिलीवरी का टाइम इतने करीब आने पर यह उसके लिए मुश्किल हो रहा था। आहान जल्दी से उसके पास गया और चाहत के पास एक तकिया रखकर उसे कंफर्टेबल करते हुए कहा, क्या कोई तरीका है जिससे तुम आराम से सो पाओ? मैंने देखा था कल रात, तुम ठीक से सो नहीं पाती हो, पूरी रात बाथरूम के चक्कर लगाती रहती हो, ठीक से सोती कब हो फिर तुम? आहान के चेहरे पर अपने लिए परेशानी देखकर चाहत के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। उसने उसी अंदाज में कहा, पिछले 3 महीने से मुझे इतनी ही प्रॉब्लम हो रही है और अब और ज़्यादा बढ़ गई है। कोई बात नहीं, अभी सिर्फ 20 दिनों की बात है, हो जाएगा सब ठीक। आई होप ये 20 दिन आसानी से और आराम से बीत जाए। चलो आओ, मैं तुम्हें सुलाता हूँ, आहान ने कहा। चाहत को कंफर्टेबल पोजिशन में लिटाने के बाद उसने चाहत का सर अपने कंधे पर रखा और धीरे धीरे उसके बालों को सहलाने लगा। आहान को कुछ भी याद नहीं था, ऊपर से वो चाहत पर गुस्सा भी था, फिर भी उसकी केयर कर रहा था। उसका प्यार देखकर चाहत को पुराने आहान की याद आ गई, जब प्यार होने पर वो उसकी इसी तरह केयर किया करता था। कुछ ही देर में चाहत सो गई थी तो वो वहाँ उसके पास से उठा और थोड़ा दूर होकर सो गया था। आहान चाहत के चेहरे को देख रहा था जो मासूमियत से सोई हुई थी। उसने अपने मन में कहा, तनु ने मुझे बताया कि तुम बिल्कुल अकेली थी, तब मैंने तुम्हें सहारा दिया था, बदले में तुम मेरा गुस्सा शांत करती थी। अपना गुस्सा शांत करने के चक्कर में मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था चाहत, सोचता हूँ तो यकीन नहीं होता कि मैं ऐसा कर सकता हूँ क्या। फिर कभी कभी लगता है कि अपने गुस्से में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, तो शायद मैंने तुम्हें अपनी सोच से भी ज़्यादा चोट पहुँचाई होगी। फिर भी तुमने हमारे बच्चे को दिल से अपनाया, लोगों की साजिशों के चलते तुम मुझसे दूर हो गई, पर एक बार आकर बात कर लेती तो सच में हमारी लाइफ डिफरेंट और अच्छी होती। आहान के दिल में चाहत के लिए नफरत नहीं थी, बस नाराज़गी थी कि वो उसे बिना बात करे आखिर छोड़कर कैसे चली गई। सोचते हुए कुछ ही देर में आहान को भी नींद आ गई थी। अगले दिन शेयरहोल्डर्स की मीटिंग होनी थी, इसलिए आहान जल्दी ही तैयार होकर नीचे आ गया था। उसके साथ में आयुष भी था, वो दोनों शिवानी को भी अपने साथ ऑफिस लेकर जाने वाले थे। पीछे से चाहत घर पर अकेली थी, ऊपर से वो नींद से भी नहीं उठी थी। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद जब आहान चेयर से उठने को हुआ, तभी शिवानी ने थोड़ा परेशान स्वर में कहा,
मेरा जाना जरूरी है क्या? चाहत अकेली है, वामिका का ध्यान रखने के लिए भी कोई नहीं है और नीचे वो दो शैतान कैद हैं। मेरा दिल नहीं कर रहा है बाहर जाने को। उसकी चिंता आपको करने की जरूरत नहीं है। चाहत का ध्यान रखने के लिए मैंने तनु को कॉल कर दिया है। उसकी फ्रेंड श्रद्धा भी यहाँ पर आ रही है तो वो अच्छा टाइम स्पेंड करेगी। बाकी इस विला की सिक्योरिटी काफी टाइट है, आहान ने शिवानी को सब समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन वामिका का क्या, उसका ध्यान कौन रखेगा? शिवानी फिर से थोड़ा परेशान होकर बोली। एक ही दिन में वो वामिका से काफी अटैच हो गई थी, आखिर बच्चों से कौन नफरत कर सकता है। आहान को गुस्सा और इरिटेशन दोनों ही हो रही थी क्योंकि शिवानी और चाहत कुछ ज्यादा ही अटेंशन दे रही थी वामिका को। उसने आईज रोल करके कहा, डोंट वरी मॉम, आपकी असिस्टेंट अभी इस घर में मौजूद है, आपकी एब्सेंस में वो बखूबी इसका ध्यान रख लेगी, चाहे उसके लिए मैं उसे कितना भी क्यों न डांटू। आहान की इरिटेशन देखकर आयुष और शिवानी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने यहाँ शिवानी की असिस्टेंट चाहत को कहा था। शिवानी अब बेफिक्र हो चुकी थी और मीटिंग में जाने के लिए तैयार थी। कुछ ही देर में वो ओबेरॉय इंडस्ट्रीज पहुंच चुके थे। शेयर होल्डर्स की मीटिंग भी शुरू हो चुकी थी। वहां ज्यादातर लोग विजय को सीईओ के पोस्ट से हटाने के फेवर में थे, लेकिन उन्हें सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। तो कुछ शेयर होल्डर ऐसे भी थे जो विजय के दोस्त हैं और उसे ही सीईओ की पोजीशन पर चाहते थे। आखिर उसकी वजह से उन्हें भी तो फायदा हो रहा था। मीटिंग में आते ही आयुष ने आहान को एक आदमी की तरफ इशारा किया। वो राजवीर शर्मा था, जो उम्र में लगभग 50 साल के आसपास था। उसके चेहरे पर गहरी दाढ़ी और मूछें थी जो अच्छे से सेट की हुई थी। उसकी आंखों का रंग ग्रे कलर का था। वो दिखने में इस उम्र में भी काफी अट्रैक्टिव था।
उसकी तरफ इशारा करने के बाद आयुष ने आहान से तभी आवाज में कहा, राजवीर शर्मा, ये महाचालबाज और घटिया इंसान है। ये और विजय ओबेरॉय मिलकर कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर घटिया सामान और कम बजट में सामने वाले का काम पूरा करके देते हैं, जिसकी वजह से ओबेरॉय इंडस्ट्रीज का नाम काफी खराब हो रहा है। ये विजय ओबेरॉय का फ्रेंड भी है और एक नंबर का ठरकी इंसान है। आपको पता है, इस उम्र में भी ये चौथी शादी करने जा रहा है। आयुष ने कम शब्दों में आहान को विजय ओबेरॉय के खास दोस्त राजवीर शर्मा के बारे में पूरी जानकारी दे दी थी। आहान उसकी तरफ काफी गौर से देख रहा था। उसने अपने मन में कहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी कहीं देखा है? विजय ओबेरॉय का दोस्त है तो जरूर कभी न कभी घर पर आया होगा, शायद तभी मैंने इसे देखा हो। वहीं जब राजवीर की नज़र आहान के ऊपर गई तो उसके चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने धीरे से कहा, तो ये ठीक हो गया है और वापस फॉर्म में आ गया है। मैंने तो पहले ही विजय से कहा था कि इसकी कंपनी के शेयर्स भी टेक ओवर कर ले, वरना ये कभी भी उसे नाक की तरह डस सकता है, और देखो यही हुआ। कुछ ही देर में शेयर होल्डर की मीटिंग शुरू हो गई थी। जैसा कि उन्होंने सोचा था, मीटिंग उसी हिसाब से हुई थी। आयुष को सीईओ तो शिवानी उसकी शैडो सीईओ बनी थी। मीटिंग खत्म हो जाने के बाद आहान आयुष के साथ वहां से जाने को हुआ, तभी राजवीर उसके पास चलकर आया। आते ही उसने सबसे पहले आयुष को बधाई दी और फिर आहान से अकेले में बात करने को कहा। आयुष जब साइड हुआ तब राजवीर ने आहान से कहा, सालों बाद तुमसे मिल रहा हूँ, आज भी बिल्कुल वैसे ही हो। वैसे तुम्हें मैं याद तो हूँ ना? नहीं, ऐरे गहरे लोगों को याद रखना कि मेरी आदत नहीं है। हाँ, तुम्हें मैं याद हूँ क्योंकि मैं खास हूँ। अब साइड हटो, तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने को होगा लेकिन मेरे पास नहीं है, आहान ने पूरे एटीट्यूड से जवाब दिया। वो वहां से जाने को हुआ तभी राजवीर ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, अजीब बात है आहान ओबेरॉय, तुम मुझे भूल गए? इसका मतलब तुम याददाश्त आने का दिखावा कर रहे हो। राजवीर की बात सुनकर आहान के कदम वहीं पर रुक गए थे। राजवीर की बातों से उसे कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा था कि उसका आहान की जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा होगा, तभी वो उसे कभी नहीं भूल सकता था। आहान राजवीर की तरफ पलटा और उसे घूरते हुए कहा, मैंने तो कहीं ये ऐलान नहीं करवाया कि मेरी याददाश्त वापस आ गई है। रही बात बिजनेस की, तो इंसान एक बार के लिए खुद को भूल सकता है, पर उस चीज़ को नहीं जो वो नींद में भी याद रखता हो। अब खुद को इतना भाव दे ही रहे हो तो बता दो कि कौन हो तुम। आहान की बात सुनकर राजवीर के चेहरे पर ईविल स्माइल थी। वो उसके पास आया और बिल्कुल धीमी आवाज में मुस्कुरा कर कहा, मैं वही हूँ जिससे तुम्हारा बाप ड्रग्स मंगवाकर तुम्हें दिया करता था। तुम अपनी जिंदगी के इतने इम्पॉर्टेंट इंसान को कैसे भूल सकते हो? मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की और तुमने बचपन में ही मुझे बर्बाद करने की कसम खा ली थी, और देखो आज मुझे पहचान तक नहीं रहे। वैसे पूरी तरह ठीक हो गए हो या अभी भी गुस्से में जानवर की तरह सामने वाले को काटने के लिए दौड़ते हो? राजवीर की बात सुनकर आहान की आंखें सर्द होने लगी। उसने गुस्से में अपनी मुठ्ठियां बांध रखी थी। आहान को कुछ याद नहीं था, पर राजवीर की बातों से एक बात साफ हो गई थी कि उसके गुस्से की बीमारी विजय ओबेरॉय और राजवीर की मिलीभगत थी। आहान कुछ करता उससे पहले राजवीर सीटी बजाते हुए वहां से चला गया। आहान ने धीरे से कहा, मुझे याद करना होगा कि मेरे साथ बचपन में क्या हुआ था जिसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। पहले शायद याद होगा लेकिन अब याद नहीं है। तनु भी नहीं जानती होगी। सब याद करना होगा, कुछ भी करके याद करना होगा, याद आए या ना आए, लेकिन इस इंसान को मैं नहीं छोड़ूंगा।
गुस्से में आहान राजवीर शर्मा को जाते हुए देख रहा था।